ज्ञान के प्रति साक्षात अर्पिता हो। अर्धा अर्धा है भगवती अर्धा, भगवान के प्रति साक्षात रूप से निवेदित हो। माने क्या, कर्म हम करते हैं किस लिए, यज्ञ हम किस लिए? महाराज युधिष्ठिर ने, दशरथ जी ने यज्ञ किया, किस लिए किया? पुत्र के। और लोग जो यज्ञ करते हैं वो किस लिए करते हैं? महाराज सगर ने यज्ञ किया और स्वामी स्वर्ग इत्यादि के लिए। किंतु यज्ञेश्वर कौन है?
विष्णु।
इसलिए यज्ञेश्वर की पूजा की, किंतु अपने सुख के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। अपना सुख मूल है, किंतु बिना भगवान को प्रसन्न किए वो फल नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बीच में एक दीवाल आ गई,
अरब सिद्धा हो गया।
दीवाल आ गई, अरब सिद्धा भी नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सीधा शुद्धि कर्म है, एकदम पक्का कर्म है, कच्चा नहीं। तो ये ज्ञान भी मुक्ति से होता है, किंतु हरिनाम इत्यादि माध्यम करते हैं कि हरिनाम करने से, श्रवण करने से, भागवत का पाठ करने से चित्त निर्मल हो जाएगा और उनकी कृपा से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ज्ञान भी कर्म, ज्ञान जो तपस्या, व्रत, होम, स्वाध्याय जो कुछ है, ये सब क्या है? बीच में कुछ बाधाएं, डायरेक्ट भगवान की नहीं है। डायरेक्ट कब होगा अर्पित? जब उनके सुख के लिए ही उसको करते हैं। एक हमने फल लिया बाजार से, बहुत ही सुंदर फल है, ले करके आए, अपने पैसे देकर, ये मेरा फल है, अब इसको भगवान को देने से प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, मेरी सिद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? भक्ति नहीं। यदि हम इस रूप में लेते, भगवान क्या है, सब कुछ है, मैं भी भगवान का हूं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए मधुर फल खा करके प्रभु को प्रसन्नता दे, उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं रहा, उनके लिए, तब ये डायरेक्ट भक्ति होगी। इसलिए अर्पिता साक्षात भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ये 9 प्रकार की भक्ति करते हैं डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करने के। अच्छा, प्रसन्न करना किस लिए चाहते हो? इसलिए कि वो प्रसन्न रहे। तो वो फिर प्रसन्न किस लिए? वही प्रसन्न हो, बस इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, बस एक ही बात। हजार बार पूछे किस लिए ये करना चाहते हो, भजन किस लिए करता है? प्रभु को प्रसन्न। तो प्रभु प्रसन्न होकर के तुमको क्या देंगे? यही देंगे कि वो प्रसन्न हो जाएंगे, बस बस और कुछ नहीं। इसको कहते हैं डायरेक्ट भक्ति, आ रहा समझ में? इसको कहते हैं
स्वरूप सिद्धा,
ये सब स्वरूप सिद्धा। इसलिए कहते हैं जीव मात्र के लिए और बिना बाधा के डायरेक्ट ये भगवान के प्रति कोई भी चीज हो अर्चन करते हैं। किस लिए? नहीं करने से यहाँ खाने के लिए नहीं देंगे, कोई काम तो करना है, नहीं तो देंगे थोड़े, कोई ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखें जैसे सबसे सहज क्या है, तो उन्होंने देखा जैसे यहाँ पर रसोई करना एक तरह से अच्छा है, कोई झंझट नहीं है, झंझट नहीं, इसलिए रसोई करेंगे और अच्छा अच्छा जो होगा, कभी अपने लिए आलू भी भाज लिया, कभी बैंगन भी रख लिया, और परमान्य जब भोग लगेगा थोड़ा सा वो भी रख लेंगे, उसमें सुविधा है। किंतु देखा जी ये तो मसाला भी बटवाते हैं और सभी काम कराते हैं, बाजार से जाकर के सभी कुछ ना, भाई ये ठीक नहीं, अर्चन ठीक है हमारे लिए, अर्चन में कोई झंझट नहीं है। तो 2 दिन अर्चन किया तो दिखा भाई ये तो सवेरे 3 बजे उठना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, तिलक करना पड़ता है, इसमें बड़ा झंझट। कहा प्रभु हमसे नहीं, हम तो केवल कीर्तन कर देंगे बस। ऐसे सब में ये सब डायरेक्ट भक्ति नहीं, तो समझो अच्छी तरह से, ये कोई भी भक्ति नहीं है। किंतु एक वैष्णव वैष्णव की टट्टी फेंकता है, ये सबसे उत्तम भागवत पाठ से भी अधिक उन्नत हो सकता है, यदि वैसे नरोत्तम ठाकुर जैसे अथवा लोकनाथ गहर गोस्वामी के प्रति जैसे हो ना, वैसे अपने गुरु के प्रति जैसे ईश्वर पूरी बात जी ने किया, वो उनकी रसमय भक्ति है, ऐसे समझना चाहिए भाई, और नहीं तो कोई भक्ति नहीं, साक्षात भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं अध्या माने साक्षात न तो ज्ञान वैराग्य कर्म आदि व्यवधान व्यवधान के साथ में बाधाओं के साथ में बीच में एक रख दिया और बाधा और ऐसे नहीं। हम लोग अभी काम क्रोध लोभ मोह अपना स्वार्थ और सब चीजों बात बीच में रख करके भगवान की सब कुछ करते हैं। यदि ये सब हट जाए और साक्षात में भगवान के लिए होने लग जाए भाई, तब फिर वैसे ही चिंता न रही, तब दिव्य आनंद देगी, तब वो शुद्धा भक्ति होगी। साचा अर्पिता एव सती, यदि अर्पिता डायरेक्ट भगवान के अपने को ही अर्पण कर दो, अपना सर्वस्व अर्पण करके कोई भी काम करेगा ना, पहले अपने लिए अपने को अर्पण कर दो, अपना सर्वस्व अर्पण कर दो भगवान, अब मेरा कुछ है ही नहीं है, क्या है जो कुछ हमारा है, मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पित, ये कहना तो सहज है किंतु करना बड़ा भारी कर, तो कर हो जाएगा तो बड़ा सहज हो जाएगा, सब प्रभु को समर्पण करके भाई ऐसा, और नहीं तो करके अब फिर उसको अर्पण करेंगे तो भक्ति नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा आरोप सिद्धा भक्ति हो जाएगी। इस ऐसा अर्चन करके अर्चन लाभ फल खाते चले, भागवत पाठ करके 7 दिन का सप्ताह करके भगवान को उसको फल दे दिया, ये हमारे कर्मों की सिद्धि हो जाएगी, ये सब भक्ति नहीं है। कीर्तन कराया, अखंड कीर्तन कराया 15 दिन का, और उसका लेकर के भगवान को समर्पण कर दिया, इसलिए हमारा असुख दूर हो जाए, हमारा ये मनोकामना पूरी, ये सब भक्ति है। संसार के लोग इन चीजों को नहीं समझते, हम लोगों को भी वो अपने कर्मों में उछल्ले बांध करके लगाना चाहते हैं, जो हम लोग वही करें, वो लोग हमारे भक्ति को भी अपने कर्म का अंग बनाना चाहते हैं,
अधीन बनाना,
अधीन, हम लोग के भक्ति का अधीन अपना कर्म नहीं करना चाहते, तब तो उनकी भक्ति हो जाएगी, ऐसा करेंगे नहीं। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा अन्य अभिलाष यदि भक्ति में रहे तो भक्ति शुद्धा नहीं होगी, साक्षात अर्पित नहीं होगी, इसलिए समस्त प्रकार की अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि को दूर करके तब भगवान का ये 9 प्रकार का जो बतलाया अच्छी तरह से विचार करके काम किया। और भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें इसमें लिखी गई हैं, करें कीर्तन शब्द से श्रवण शब्द से, यहां ये प्रभुपाद जी इसका तथ्य लिख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद की भाषा में उनके शब्दों को सुनो और वैसे ही करने की चेष्टा करो भाई। यहां श्रवण शब्द से कृष्ण का नाम रूप गुण परिकर और उनके लीलाओं का कर्ण के साथ में प्रतिपूर्वक स्पर्श हो तो उसको कहेंगे श्रवण, इन सब चीजों का। और वो भी जैसे कि परीक्षित महाराज ने जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की कथाएं सुनी थी ऐसे प्रति के सहित हो तो श्रवण होगा, और ऐसे महापुरुषों के साथ में उन्हीं से उसी प्रकार से कीर्तन, उसी प्रकार से स्मरण, पहले नाम फिर नाम के साथ साथ में कीर्तन करते या स्मरण करते समय या श्रवण करते समय सुनते सुनते नाम, फिर उनकी रूप कृष्ण का रूप, फिर उनका गुण क्या क्या है, फिर उनकी लीलाएं, और फिर उनके परिकर के साथ में लीलाएं, ये सब सुनने का नाम क्रमशः है। वैसे ही कीर्तन इन सब का, और वैसे ही इनका श्रवण, ये तीनों के संबंध में ऐसा समझना है, क्रम विकास है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन में लिखा है ये भगवान का नाम प्रेम की कलिका है,
प्रेमेर कली का नाम अद्भुत प्रेमेर
कली, जैसे कि होती है ना अनार की कली या किसी गुलाब की कमल की कली, कमल कली में कोई सुगंध नहीं होता और बड़ी कठोर होती है, कोमल नहीं होती, उसमें पराग इत्यादि भी कुछ नहीं दिखता। धीरे 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 वो कली थोड़ी सी फूलने लगती, जितने ही फूलने लगेगी उसमें सुगंध, माधुर्य, कोमलता, पराग इत्यादि सभी कुछ उसमें प्रकाश, वही क्रमशः धीरे धीरे अर्ध विकसित होगी, फिर इसके बाद में पूर्ण विकसित होगी और पूर्णतम रूप में विकसित होगी। वैसे ही नाम, पहले नाम फिर रूप उसके साथ में, फिर पहले नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर हम क्या सुनेंगे, ये कृष्ण ये हैं बांसुरी बजाते हैं, श्याम रंग के हैं, पीतांबर पहनते हैं, माथे पर मोर मुकुट, आंखों से तिरछी नजर से वो मुस्कुराते हुए दूसरों का चित्त लुभाते हैं, ये सब ये रूप आया। और गुण कैसे आए, श्रीमद् भागवत में जैसे बड़े हैं वर्णन किया गया है, हमारे गोस्वाम ने जैसा वर्णन किया, उनके गुण बड़े भक्त वत्सल अपने भक्तों के लिए सर्वस्व परम करुण है, रसिक शेखर है, और जितने गुण है ना उन 16 प्रकार के वो सब उनमें समावेश। इसके बाद में गुण और उनकी लीलाएं स्वार्थी रूप में इंगित होंगी, पहले मंत्र उपासना मई के रूप में एक एक लीला, और फिर उनका चेन माला, पहले एक एक फूल और फिर वही गुथ करके स्वर सखी के रूप में वो सब प्रकट होंगे, और उसके बाद उनके लीला परिकर उनके साथ में आए। इसको कहते हैं नाम श्रवण कीर्तन और प्रश्न, ऐसे तीनों में समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये श्रवण कीर्तन और स्मरण तीनों के लिए ऐहिक एवं पारात्रिक पारलौकिक, ऐहिक माने इहलौकिक और पारात्रिक या पारलौकिक परलौकिक, परलौकिक माने एकदम गोलोक वृंदावन तक पहुंच गए, वहां तक लास्ट तक और जितनी प्रकार की उपाधियां हैं लौकिक पारलौकिक सब कुछ त्याग करके, उपाधि माने जैसे नाम है ना तो नाम के साथ में उपाधि, कैसे रामचंद्र चौबे, ये चौबे क्या हुआ तो ब्रह्मचारी है, ये क्या है सन्यासी क्या है उपाधि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब उपाधि, लौकिक स्त्री पुन सप्त ये सब भी उपाधि,
वर्ण आश्रम
तो जहां तक वर्ण और आश्रम से ये सब जहां संबंध है, परलोक में जैसे कि स्वर्ग में देवता का देवता की उपाधि, इंद्र इत्यादि उपाधि, ब्रह्मा तक ब्रह्मा की उपाधि, ये सब दूर करके जितनी भी उपाधियां हैं, और किसी फल की इच्छा न रख करके लौकिक, किंतु भगवान की सेवा मुझे मिले, राधा कृष्ण प्रसन्न हो ये रहेगी काम, ये तो जरूर रहेगा, केवल मात्र भगवान में ही मनोनिवेश करने का नाम निष्कर्म है। निष्कर्म किसको कहते हैं, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का फल की आशा उसको निष्कर्म कहते हैं, इसी को निष्कर्म ही यहां पर भक्ति है। कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की बतलाई जाने पर भी सबके लिए एक साथ में 9 प्रकार की भक्ति या 64 प्रकार की भक्ति संभव पर नहीं, किंतु एक उसमें प्रधान होगा बाकी वो कर सकता है, सभी अंगों का कर सकता है, और रागानुगा में अपने साधन के अनुकूल प्रतिकूल साधनों को नहीं करेगा, तो एक एक अंग के साधन से ही उसकी सर्वार्थ सिद्धि हो सकती है, क्योंकि एक ही चीज, भक्ति वृत्ति एक है, एक वृत्ति होने पर भी उसकी कुछ कुछ धाराएं हैं, किंतु एक ही चीज है। किसी स्थल में यदि कहीं उसमें कोई मिश्रण देखा जाता है, एक आदमी कीर्तन प्रधान, कीर्तन प्रधान माने क्या, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, यदि श्रोता यदि वक्ता है ना, ये बतलाएंगे, यदि कोई वक्ता है तो उस समय में सुनेंगे, हमसे श्रेष्ठ कोई वक्ता है तो सुनेंगे, और श्रोता है तो वो कीर्तन करेगा, और यदि कोई नहीं है तो क्या करेगा, हरे कृष्ण 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 स्मरण कीर्तन कभी करेगा। इस प्रकार से होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के रुचि विशिष्ट व्यक्ति हैं, किसी के लिए एक उपयुक्त है, कोई किसी के लिए एक प्रकार का, इसलिए समान भाव है, अर्थात सबके लिए एक ही प्रकार का निर्देश नहीं है, अपने अपने रुचि के अनुसार में अपने अपने साधनों को वो करेगा। किंतु नवदा भक्ति में ही जितने अंग हैं भक्ति के वो सब समाविष्ट हैं। नवदा भक्ति के अंदर में नव भक्ति का करने से सब 64 प्रकार की भक्तियां, सहस्त्र प्रकार की भक्ति उसमें अंतर्भूत हो जाती है। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष भावे ये नौटी भक्त्यांगेर कथाई किंतु करें इतना होने पर भी भक्ति के साधन में श्रवण का ही प्राधान्य समझना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कर पहली स्थिति में श्रवण नहीं ठीक से होगा तो कीर्तन भी ठीक से नहीं होगा, और कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण भी नहीं होगा, इसलिए श्रवण पर इस साधन मार्ग में सबसे पहले श्रवण पर ही अधिक शुद्ध रूप से श्रवण होगा भक्ति उसकी शुद्ध होगी, नाम भी शुद्ध होगा, नाम के प्रति रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, इसी तरह से। अब उन्होंने एक एक के विषय में अब वो बतलाते हैं। जी गोस्वामी अभिश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं पर आधारित होकर के, जिसमें कि जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में इस पर विचार किया, उसमें से थोड़े थोड़े विचार ले करके आज रहने दे, कितना हुआ,
6:30,
हाँ कब रहने दे, 1 घंटा से अधिक हो, कल एक एक को लेंगे, आप लोग इसमें कुछ सीखिए और उसी के अनुसार में हम लोग भजन बनाए, तब देखेंगे चित्त प्रसन्न रहेगा और हम लोग भजन में कम से कम उन्नति कर सकते। कल एकादशी
और परसों 57 के भीतर पारण
सूर्योदय से लेकर 9:57 10 बजे तक।